आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज प्रदेश की 8 संसदीय सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। शाम 5 बजे तक हुआ 52.91% मतदान। चौथे चरण में प्रदेश की 13 सीटों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज हुई जांच। पांचवें चरण के लिए प्रदेश की 14 सीटों पर नामांकन हुआ शुरू। विभिन्न दलों के शीर्ष नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में की जनसभाएं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरेली में किया रोड शो। और प्रदेश में तेज गर्मी और लू का सिलसिला जारी। 20 से अधिक जनपदों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज प्रदेश के 8 संसदीय क्षेत्रों अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। 17,704 मतदान केंद्रों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चला। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
चुनाव के दूसरे चरण में ईवीएम में गड़बड़ी की कुछ घटनाओं को छोड़कर कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्ण रहा। पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र में फैली इन 8 सीटों के सभी मतदान केंद्रों पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। खासतौर पर अमरोहा में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए काफी उत्साहित दिखे। कुछ लोग तो बाकायदा गाजे बाजे के साथ वोट डालने पहुंचे। पहली बार मतदान करने वाले मतदाता, दिव्यांग वोटर और महिलाओं की भी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर नजर आईं। आज का मतदान वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, फिल्म स्टार हेमा मालिनी और अरुण गोविल, पूर्व बसपा सांसद और कांग्रेस सपा गठबंधन के उम्मीदवार दानिश अली और वरिष्ठ रालोद नेता राजकुमार सांगवान सहित कई राजनीतिक दिग्गजों के भाग्य का फैसला करेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि शाम 5 बजे तक 52.91% मतदान हुआ है। उन्होंने बताया कि शाम 5 बजे तक सबसे अधिक अमरोहा में 61.89% मतदान और सबसे कम मथुरा में 46.96% मतदान की सूचना है। आइए बात करते हैं हमारे अमरोहा प्रतिनिधि से। मरगूब, आप बताएं, अमरोहा में इस चरण में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, परंतु 2019 के चुनाव के मुकाबले मतदान प्रतिशत घटा है, इसके क्या कारण नजर आते हैं? मरगूब
जी, अमरोहा में 2019 के मुकाबले इस बार मतदान का प्रतिशत कम रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि मतदान केंद्रों पर एक वर्ग विशेष के वोटर्स की तादाद बहुत कम देखने को मिली है। 2019 व 2014 में यही वर्ग विशेष वोटर बड़ी तादाद में वोट देने के लिए निकला था और अमरोहा का मत प्रतिशत 70% को पार कर गया था। दूसरी ओर आज 8 सीट पर हुए मतदान में अमरोहा का मतदान प्रतिशत सर्वाधिक है। यह खबर अमरोहा के लिए संतोषजनक है। अमरोहा में प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार 64.27% मतदान हुआ है। जी
धन्यवाद मरगू। दूसरे चरण की इन 8 लोकसभा सीटों के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों सहित कुल 91 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 10 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। आज का मतदान भाजपा की हेमा मालिनी, अरुण गोविल, महेश शर्मा, कांग्रेस के दानिश अली जैसे कई राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत का फैसला करेगा। इस चरण में बागपत एक ऐसी सीट है जहां 4 दशकों के बाद चौधरी चरण सिंह परिवार के बाहर से कोई चुनाव लड़ रहा है। इस सीट पर रालोद प्रत्याशी राजकुमार सांगवान का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बसपा प्रत्याशियों से है। इस चरण में गौतम बुद्ध नगर और मथुरा में सबसे अधिक 15-15 प्रत्याशी और बुलंदशहर में सबसे कम 6 प्रत्याशी मैदान में है। इन 8 सीटों में से 2019 के लोकसभा चुनाव में अमरोहा को छोड़कर 7 सीटें भाजपा को मिली थीं। हमारे गौतम बुद्ध नगर प्रतिनिधि से पूछते हैं कि वहां क्या खास रहा। विशाल, आप सुन पा रहे हैं?
जी, मैं सुन रहा हूं आपको।
आप बताएं कि गौतम बुद्ध नगर में मतदान प्रतिशत का क्या हाल रहा और वहां क्या कुछ खास रहा?
गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर द्वितीय चरण मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। लोकतंत्र महापर्व में मतदान के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। खासतौर से दिव्यांग मतदाताओं के साथ युवा मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर शाम 5 बजे तक 51% मतदान दर्ज किया गया। जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया गया, फिर भी मतदान प्रतिशत विगत लोकसभा चुनाव की अपेक्षा कम दिखा। ऐसा माना जा रहा कि गर्मी की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकले, वहीं छुट्टियों की पड़ने की वजह से लोग छुट्टियां मनाने के लिए बाहर निकल गए।
धन्यवाद विशाल। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रदेश की 13 संसदीय सीटों शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच के लिए 220 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। आज नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजेश कश्यप का नाम खारिज हो गया। नामांकन पत्र की जांच के दौरान उनका जातीय प्रमाण पत्र गलत पाया गया। इस चरण में 29 अप्रैल नाम वापसी की अंतिम तिथि है, 13 मई को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए प्रदेश की 14 संसदीय सीटों लखनऊ पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगामी तीन मई तक प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किए जाएंगे। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 6 मई को नाम वापसी होगी। इस चरण में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में 20 मई को मतदान होगा। हमीरपुर संसदीय सीट पर नामांकन के पहले दिन आज भाजपा प्रत्याशी पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल ने नामांकन दाखिल किया। वहीं बसपा और सपा, कांग्रेस गठबंधन सहित अन्य दलों के प्रत्याशियों ने 18 पर्चे खरीदे। जालौन में 9 प्रत्याशियों ने 21 पर्चे खरीदे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह ने नामांकन दाखिल किया। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। यहां पहले दिन 21 व्यक्तियों की ओर से 29 सेट नामांकन फॉर्म प्रत्याशियों एवं उनके प्रतिनिधियों ने लिये। लखनऊ पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए आज भाजपा प्रत्याशी ओपी श्रीवास्तव ने नामांकन किया। उनके साथ ही लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल सहित पार्टी के नेता बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश सिंह चौहान ने भी नामांकन भरा। लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट भाजपा विधायक आशुतोष टंडन के निधन के बाद रिक्त हुई है। 5वें चरण में 2,70,00,000 मतदाता हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के कई वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक निर्वाचन क्षेत्रों में अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरेली में रोड शो किया। इसमें उनके साथ भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। श्री योगी ने संभल में आज जनसभा में तुष्टीकरण की नीति को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। इससे पहले लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए श्री योगी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को भारत के लोकतंत्र के लिए घातक बताते हुए कहा कि कांग्रेस मजहब के आधार पर देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास, सुरक्षा और सुशासन के मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश को नई दिशा दी है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एटा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र बचेगा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। श्री यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार में बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया गया, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर गरीब किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। वहीं बसपा समन्वयक और पार्टी के स्टार प्रचारक आकाश आनंद ने नगर और कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता बुलडोजर सरकार नहीं चाहती, वे डॉ अम्बेडकर के सिद्धांत पर काम करने वाली मायावती की सरकार चाहते हैं। प्रदेश में तेज गर्मी और लू से लोग परेशान हैं। 20 से अधिक जनपदों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में प्रदेश में अधिकतम तापमान प्रयागराज में 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा वाराणसी में 42.3 डिग्री सेल्सियस, आगरा में 41.8 डिग्री सेल्सियस, बुलंदशहर में 42 डिग्री सेल्सियस और लखनऊ में 40.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज प्रदेश की 8 संसदीय सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। शाम 5 बजे तक हुआ 52.91% मतदान। चौथे चरण में प्रदेश की 13 सीटों के लिए दाखिले नामांकन पत्रों की आज हुई जांच। 5वें चरण के लिए प्रदेश की 14 सीटों पर नामांकन हुआ शुरू। विभिन्न दलों के शीर्ष नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में की जनसभाएं, भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरेली में किया रोड शो और प्रदेश में तेज गर्मी और लू का सिलसिला जारी, 20 से अधिक जनपदों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।